अभी अर्थ नाम का जो प्रमेय है उस प्रमेय की चर्चा से जो है चल रही थी पिछले पाठ के अंत में कि अर्थ का मतलब यहाँ पर इंद्रिय अर्थ नहीं है बल्कि पद अर्थ है, पदार्थ है, और ये जो पदार्थ हैं वही अर्थ यहाँ पर कहे गए हैं। और ये षट छह प्रकार के होते हैं, और ये छह कौन हैं? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये छह नाम, छह जो हैं अर्थ हैं। आगे कहते हैं कि प्रमाण आदयो यद्यपि अत्रैव अंतर्भवन्ति। यहाँ पर एक विशेष बात आपको जानना जरूरी है कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन जो है ये एक समान कैटेगरी के दर्शन माने जाते हैं, किंतु दोनों में भेद भी है। ऐसा नहीं है कि सारी बातें दोनों की समान ही हैं, तो दोनों में भेद भी है और दोनों में समानता भी है। अब भेद क्या है? तो इसमें सबसे बड़ा जो भेद है वो पदार्थ के बारे में है। न्याय दर्शन जो है वह क्या, अच्छा सबसे बड़ा भेद अगर कहें तो फिर दूसरी बात कहेंगे, मैं पहले वही दूसरी बात ही बता देता हूँ। ये न्याय दर्शन जो है इसका फोकस जो है वो प्रमाण पर होता है, प्रमाण को हाईलाइट करता है, और ये जो वैशेषिक दर्शन है यह प्रमेय को फोकस करता है, प्रमेय को हाईलाइट करता है, माने प्रमेय के बारे में ज़्यादा विचार किया गया है, और न्याय दर्शन में जो है प्रमाण के बारे में ज़्यादा विचार किया गया। तो ये तो मेन अंतर है, और भी अंतर हैं, उसमें से एक अंतर ये है कि न्याय दर्शन में जो है 16 प्रकार का पदार्थ बताया गया है, और वैशेषिक दर्शन में 6 प्रकार का भाव पदार्थ बताया गया है। पदार्थ भी दो हैं, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। तो भाव पदार्थ जो हैं वो 6 प्रकार के बताए गए हैं। वो 6 प्रकार के भाव पदार्थ हैं यही द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। और न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए गए। शुरू में ही पढ़ा था ना, पहला सूत्र जो था गौतम का, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन वाला, उसमें 16 पदार्थ कहे गए हैं यहाँ इस सूत्र में। तो ये जो प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं, ये 16 पदार्थ इन 6 पदार्थों के अंतर्गत ही समाविष्ट हो जाते हैं, ऐसा मान करके वैशेषिक दर्शन वालों ने केवल 6 पदार्थ माना है। और न्याय दर्शन में जो है ना, इस अंतर्भावित होते हुए भी जब ये संभव है कि इन 6 में ही जो है 16 के 16 प्रमाण जो है समाहित हो जावे, फिर भी न्याय दर्शन में पदार्थ के रूप में 16 प्रमाण आदि को जो है बताया गया। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि प्रमाणादय 16 पदार्थ यद्यपि अत्रैव अंतर्भवन्ति। प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं वो यद्यपि इसी में अंतर्भूत हो जाएंगे, इन्हीं 6 पदार्थों में अंतर्भूत हो जाएंगे, इन्हीं 6 के अंतर्गत किसी न किसी में जो है वो सारे आ जाएंगे, अलग से जो है 16 मानने की जरूरत नहीं है। तथापि फिर भी प्रयोजन वसात भेदेन कीर्तनम, फिर भी किसी खास प्रयोजन से जो है इसमें भेदेन कीर्तनम किया गया, माने न्याय दर्शन में 16 प्रकार का जो भेद का कीर्तन किया गया है, कीर्तन माने बोधनम, तो 16 प्रकार के भेद का जो बोधन किया गया है न्याय दर्शन में वो क्यों किया गया? तो प्रयोजन वसात, कहा कि किसी विशेष प्रयोजन से। वह विशेष प्रयोजन क्या है? तो विशेष प्रयोजन यही है कि वैशेषिक दर्शन स्वतंत्र दर्शन है और न्याय दर्शन भी स्वतंत्र दर्शन है, दोनों का अपना अपना अलग अस्तित्व है। इस स्वातंत्र्य को बताने की दृष्टि से, इस स्वातंत्र्य को कहने की दृष्टि से ही जो है यहाँ पर भेदेन कीर्तनम किया गया है, 16 प्रकार से भेद बताया गया है। वस्तुतः जो है इन 6 के अंतर्गत ही जो है ये प्रमाण आदि पदार्थ समाहित हो सकते हैं, ऐसा आपके तर्क भाषाकार केशव मिश्र जी ने बताया। अब इसमें ये जो यहाँ पर 6 प्रकार का पदार्थ बताया गया, उसमें सबसे पहला नंबर जो है वह है द्रव्य का। अब इसमें जो 6 पदार्थ हैं, ये जो 6 के 6 पदार्थ हैं ना, ये भाव पदार्थ हैं, ठीक है? तो अब इन 6 अब क्रम से जो है ना एक एक पदार्थ का विवेचन यहाँ पर किया जाएगा। उसमें सबसे पहला नंबर आता है द्रव्य नाम के पदार्थ का। तो अब चलिए यहाँ के पाठ में जो है ना, अब द्रव्य पदार्थ के बारे में बताया जा रहा है कि तत्र समवायि कारणम द्रव्यम, द्रव्य का ये लक्षण है कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो कहा कि समवाय कारण को द्रव्य कहा जाता है। कारण तो आप समझते हैं, कारण और कार्य। अब कारण जो है, जो समवाय संबंध से कारण होता हो है, उसको हम कहते हैं समवायी कारणम। ये ध्यान रखिएगा, समवाय संबंध से जो कारण होता है उसको हम कहते हैं समवायी कारण, और जो किसी कार्य का समवायी कारण होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। यही मतलब हुआ समवायी कारणम द्रव्यम, माने जो किसी कार्य का समवायी कारण होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। इससे आप एक ये भी समझ सकते हैं कि कहीं पर भी कोई भी बात चले, अगर समवाय कारण की बात चले ना, तो आंख बंद करके कह दीजिए कि अच्छा समवाय कारण की बात हो रही है, तो समवाय कारण तो द्रव्य ही होता है, माने समवाय कारण का द्रव्य ही होगा। गुण कर्म ये सब जो है समवाय कारण नहीं होते हैं, ये सब असमवाय कारण होंगे, निमित्त कारण होंगे गुण कर्म सब, लेकिन समवाय कारण जब कभी होगा तो वह द्रव्य ही होगा। तो किसी कार्य का जो समवाय कारण है वह द्रव्य ही होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना, द्रव्य में गुण जो है वह रहता है, मैंने पीछे भी कहा था कि गुणस्तु गुणी आश्रित एव, गुण जो है वह गुणी पर ही आश्रित होता है। जैसे आत्मत्व जाति की जब हम सिद्धि कर रहे थे उसमें कहते थे ना कि ये जो आत्मा का जो विशेष गुण है बुद्धि आदि, बुद्धि इच्छा द्वेष ये सब जो है वो गुण है, और गुण जो है तो किसी गुणी में ही रहेगा, माने कि गुणी मतलब किसी द्रव्य में ही रहेगा। तो गुण जो द्रव्य में रहता है वह समवाय संबंध से रहता है, ये ध्यान रखना है कि गुण का आश्रय द्रव्य होता है, और गुण जो रहेगा उस द्रव्य में वो किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा। खैर, तो चलिए यहाँ जो लक्षण बताया गया कि तत्र समवाय कारणम द्रव्यम, कार्य का जो समवाय कारण होगा वह द्रव्य कहलाएगा। अब दूसरा भी एक लक्षण बताते हैं कि गुणाश्रयो वा, एक द्रव्य का एक दूसरा लक्षण बताया कि गुणाश्रय, माने गुण का जो आश्रय होता है वह द्रव्य कहलाता है। तो गुण का जो आश्रय होगा वह द्रव्य कहलाता है। तो अब इसमें एक संदेह ये होगा कि गुण का आश्रय द्रव्य कहलाता है, तो किस संबंध से गुण का आश्रय द्रव्य कहलाता है, तो समवाय संबंध से गुण का जो आश्रय होगा वह द्रव्य कहलाएगा। तो अपनी ओर से आप यहाँ लिख सकते हैं कि समवायेन गुणाश्रयो द्रव्यम, कि समवाय संबंध से जो गुण का आश्रय होगा वह द्रव्य कहलाएगा। तो अब यहाँ पर एक संदेह ये हो सकता है कि दो लक्षण बनाने की क्या जरूरत है, एक कहा ना समवाय कारणम द्रव्यम, तो इसी यही रहने देते, फिर गुणाश्रय वा कहने की क्या जरूरत पड़ी। तो ऐसा है कि समवाय कारणम द्रव्यम जो है यह केवल नित्य द्रव्य में ही जो है ना ये लक्षण लागू होगा, अनित्य द्रव्य में ये लक्षण नहीं जाएगा। तो नित्य द्रव्य के हिसाब से समवाय कारणम द्रव्यम कहा, और अनित्य द्रव्य की दृष्टि से जो है गुणाश्रयो द्रव्यम कहा। इस तरह से ये दो लक्षण यहाँ पर बताए गए। अब जब द्रव्य का लक्षण बता दिया तो फिर अब द्रव्य के भेद के बारे में बताएंगे कि वो द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कहा कि तानि च द्रव्याणि पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिक् आत्म मनांसी नवैव, कहा कि ये नौ प्रकार के द्रव्य होते हैं। वो नौ प्रकार कौन है, तो आप चाहें तो उंगली पर गिन सकते हैं। एक तो पृथ्वी है, दूसरा अप कहते हैं जल को, फिर तीसरा है तेज कहते हैं अग्नि को, चौथा है वायु जानते ही हैं, पांचवा आकाश को भी थोड़ा बहुत तो जानते हैं, मैंने कहा ना शून्य को आकाश कहते हैं, फिर जो है अगला जो द्रव्य है वह है काल भी जानते हैं, फिर है दिक् भी जानते हैं, दिशा जिसको कहते हैं, और फिर आत्मा और मन नव एवा, ये नौ ही जो हैं ये द्रव्य हैं, इसके अलावे कोई द्रव्य नहीं है। यहाँ जो नव नहीं कहा, नव एव कहा, उस एव कहने के भीतर भी तात्पर्य छुपा हुआ है। क्या है कि मीमांसा दर्शन वाले ना दस द्रव्य मानते हैं, वो तम को भी द्रव्य मानते हैं, तमह मतलब अंधकार को भी दसवां द्रव्य मानते हैं। तो लेकिन न्याय दर्शन वाले जो है कहते हैं कि नहीं जी, अंधकार जो है वो दसमा द्रव्य नहीं है, द्रव्य तो नौ ही है। तो अब संदेह ये होगा कि जब मीमांसक उसको दसमा द्रव्य मानते हैं, न्यायी क्यों नहीं उसको दसमा द्रव्य मानते हैं? तो कहते हैं कि अंधकार नाम का अलग से कोई पदार्थ मानने की जरूरत नहीं है, तेज का जो अभाव है, प्रकाश का जो अभाव है, वही अंधकार होता है। तो तेज की गिनती तो हमने पदार्थ में कर ही दी है, और उसका जो अभाव है वो अंधकार है, इसलिए उसको अलग से पदार्थ मानने की जरूरत नहीं है। तो मीमांसकों का जो है कि तमह द्रव्यम, यह जो दशम द्रव्य मानते हैं तमस को, उसको खंडन करने के लिए, उससे असहमति दिखाने के लिए ही यहाँ पर नव एव कहा गया कि नौ ही द्रव्य होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। अब ये जो नौ द्रव्य हैं उसमें आगे कहते हैं कि अर्थेषु निरूपणीयेषु, ये जो अर्थ बताए गए बारह प्रकार के, वो सब के सब अर्थ जो है यहाँ पर तक भाषा में निरूपणीय है, माने इनका निरूपण करना है। उसमें प्रथम जो अर्थ है द्रव्य पदार्थ, उसका जो है प्रसंग प्राप्त है वह उसमें नव भिदस्य भेदात, उसमें नौ प्रकार के भेद बताए गए, और उन नौ भेदों का निरूपण हमें जो है न करने की इच्छा है। उसमें क्रम प्राप्त जो पहला द्रव्य है पृथ्वी, उस पृथ्वी का जो है यहाँ पर लक्षण बताया जाएगा, लक्षण और स्वरूप बताया जाएगा, क्योंकि ये नौ प्रकार के द्रव्य जो हैं उसमें पहली तो पृथ्वी ही है ना, तो सबसे पहले पृथ्वी का लक्षण जो है यहाँ पर आपके ग्रंथ में बताया जा रहा है। उसमें कहते हैं कि तत्र पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी। अब पृथ्वी का लक्षण क्या है आप एक जान लीजिए। पृथ्वी जो है ना दो प्रकार से लिखा जा सकता है, एक तो पृथ्वी में थ में इकार की मात्रा डाल करके पृथ्वी ये लिखेंगे, ये भी सही है, और एक आधा थ वाला पृथ्वी, ये भी सही है, ये भी होता है। लेकिन आपके ग्रंथ में जो है ना ये थकार में इकार लकार के लगा करके पृथ्वी का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए, ये पृथ्वी जो है ना लक्ष्य है, और इसका लक्षण बताना है, तो इसका लक्षण क्या होगा? तो आप जानते हैं लक्ष्य में रहने वाला जो धर्म होता है वही धर्म लक्षण होता है। तो पृथ्वी जो है इसमें मतलब कौन सा धर्म रहता है? तो पृथ्वीत्व धर्म रहता है, ठीक। तो वह जो पृथ्वीत्व धर्म है, वह पृथ्वीत्व धर्म जिसमें रहे उसे हम पृथ्वी कहते हैं। अब सारे धर्म तो जाति नहीं कहलाते, लेकिन बहुत सारे धर्म जो है ना जाति भी कहलाते हैं। तो यह जो पृथ्वीत्व धर्म है वह जाति रूप है, उसको जाति कहने में कोई बाधक नहीं है। इसीलिए इन्होंने लक्षण बताया पृथ्वीत्व सामान्य बती पृथ्वी। पृथ्वीत्व सामान्य, सामान्य का अर्थ मैंने पहले भी कहा था कि जाति, तो यहाँ जो पृथ्वीत्व सामान्य है उसका अर्थ करेंगे कि पृथ्वीत्व जाति। तो पृथ्वीत्व जाति जो है उसका लक्षण हो गया, और लक्ष्य क्या होगा? तो पृथ्वीत्व सामान्य बती, माने पृथ्वीत्व सामान्य का जो आश्रय है, पृथ्वीत्व जाति का जो आश्रय है, पृथ्वीत्व जाति जिसमें रहती है उसे हम पृथ्वी कहते हैं। इस तरह से पृथ्वीत्व जाति पृथ्वी का लक्षण। कोई पूछे ना तो कि पृथ्वी का लक्षण क्या है, तो आप गौर ध्यान से बोलिएगा पृथ्वीत्व सामान्यम पृथिव्या लक्षणम। पृथ्वीत्व सामान्य जो है वही पृथ्वी का लक्षण है। पृथ्वी क्या होती है, कैसी होती है, ये अगर पूछे तो कहिएगा पृथ्वीत्व सामान्य वती पृथ्वी, क्योंकि लक्षण पूछने पर तो केवल धर्म ही बताया जाएगा ना। तो चलिए, पृथ्वीत्व सामान्य वती पृथ्वी। अब यह जो पृथ्वी है उसका स्वरूप बताया जा रहा है कि काठिन्य कोमलत्वादि अवयव संयोग विशेषेण युक्ता। ये जो पृथ्वी होती है यह कैसी होती है, तो अवयव संयोग युक्ता, अवयवों के परस्पर संयोग विशेष से जो है यह युक्त होती है। वह जो परमाणुओं का, असल में क्या है कि परमाणुओं का जो संयोग होता है उससे जो है ना पृथ्वी बनती है। तो परमाणु हो गया अवयव, और उस परमाणु रूपी अवयव के संयोग से पृथ्वी बनती है। तो वह जो संयोग से युक्त होती है पृथ्वी, ठीक। अब वह संयोग अगर कठोर है तो वह उसको छूने से कठोर मालूम होती है पृथ्वी, अगर उसका संयोग शिथिल है हल्का है संयोग तो वह छूने पर कोमल महसूस होती है पृथ्वी। तो वही कह रहा कि काठिन्य कोमलत्वादि, काठिन्य माने कठिनता माने वो जो है ना कठोरता, और कोमलत्व कोमलता, तो कठोरता कोमलता आदि अवयव संयोग विशेष जो है, अवयव संयोग विशेष का ही नाम है ये काठिन्य और कोमलत्व। तो काठिन्य और कोमलत्व आदि जो अवयव संयोग विशेष है उस अवयव संयोग विशेष से युक्त होती है ये पृथ्वी। माने कोई पृथ्वी जो है ना छूने पर कठोर महसूस, जैसे पत्थर है तो पत्थर को छुएंगे तो कठोर महसूस होगा ना, तो वह भी, लेकिन वह भी पृथ्वी है। और वहीं पर जो है जैसे मान लीजिए आटा है, उसको जब हम सानते हैं आटा को गूंदते हैं या आटा ये उसको छूते हैं तो आटा को गूंदते हैं उसको छूते हैं तो कोमल लगता है। आम का फल पका हुआ फल है उसको छूते हैं तो कोमल लगता है। तो इसमें क्या होता है, अब काठिन्य कोमलत्व आदि अवयव संयोग विशेषण युक्त है, इसीलिए कहा कि पृथ्वी जो है वह काठिन्य कोमलत्व आदि जो अवयव संयोग विशेष है, अवयव संयोग विशेष का नाम ही है काठिन्य कोमलत्व। तो आदि से ले लिया माने एक बीच का भी होगा जो न कठोर होगा न कोमल होगा, बीचों बीच का होगा, इसलिए आदि कह दिया। तो काठिन्य कोमलत्व आदि जो अवयव संयोग विशेष है उससे युक्त पृथ्वी होती है। और उसके रूप कितने प्रकार के होते हैं तो बताया यहाँ पर पांच तरह का बताया। एक तो है घ्राण, जो यही घ्राणेन्द्रिय, फिर शरीर हमारा आपका जो शरीर है या किसी भी जीव का शरीर है, फिर मृत पिंड हो गया मिट्टी का ढेला मिट्टी का गोला, पाषाण माने पत्थर, और वृक्ष आदि रूपा माने वनस्पति। तो इस तरह से पांच जो है ना पांच प्रकार के इसके रूप होते हैं। और इसमें रहने वाले गुण क्या क्या होते हैं पृथ्वी में, तो आगे बताया कि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व संस्कार, ये इतने सारे गुण हैं। इससे बति माने इससे युक्त जो है वह पृथ्वी होती है। तो इस तरह से पृथ्वी के बारे में यहाँ तक जो है ना हमने पढ़ाया, और समय रिकॉर्डिंग का होने के कारण यहीं पर इसको रोकते हैं, आगे का आगे पढ़ेंगे।